पुनीत तिथि है। आज शरद पूर्णिमा है। एक तो कार्तिक पूर्णिमा स्वयं भी पवित्र से भी पवित्रतम है। कृष्ण की जितनी अधिकांश लीलाएं हैं, विशेष करके सर्वोत्तम लीलाएं हैं, ये कार्तिक महीने में ही हुई है। सर्वोत्तम से उनकी जितनी भी सर्वोत्तम लीलाएं सब इसी माह में कार्तिक महीने। इस महीने की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधिका जी, जब कोई थोड़ी भी आराधना करता है राधा कृष्ण की, राधा रमोदर जी की इस महीने में, तो उसे प्रसन्न होकर के ये जुगल किशोर किशोरी जी अपनी सर्वोत्कृष्ण सेवा प्रदान करती है। थोड़ी सी देर कृष्ण का महीना है, पुरुषोत्तम महीना है, किंतु राधा जी का महीना है ये कार्तिक, इसलिए इनको कार्तिकेश्वरी कहते हैं, कार्तिक की ईश्वरी। कार्तिक को ऊर्ज मास भी कहते हैं। ऊर्ज मैंने क्या, शक्ति, शक्ति का संचार, ऊर्जा शक्ति, विद्युत, बिजली। आजकल जो कुछ भी उन्नति हो रही है ये ऊर्जा को लेकर के हो रहा है, विद्युत को लेकर के जितना सब कुछ हो रहा है, तो ऊर्जा प्रधान है। यदि हमारे शरीर से ऊर्जा निकल जाए, गर्मी निकल जाए, तो हम लोग मर जाए। तो ये कृष्ण की ऊर्जा है, ऊर्जेश्वरी कृष्ण की ये शक्ति है। कृष्ण में से शक्ति निकाल दी जाए तो शक्तिमान, निराकार, निर्विशेष, निरंजन, निर्गुण, ये सब रह जाए, तो कृष्ण ऐसे रह जाए। इसलिए कृष्ण की ऊर्जा यही है। श्रीमद् भागवत में तेजो वाय मुदा जत प्रेमत तेजो मैंने यही पूछा, किसको ध्यान करते हैं और भागवत में किसको ध्यान करने के लिए कहा गया, सत्यम परम सत्य स्वरूप है, सबसे श्रेष्ठ है, सबके आदि है, उनका भी ये गायत्री का ये अर्थ या भाष्य है श्रीमद् भागवत पूरा। इसलिए गायत्री में आया है और भी मही धीमही भर्गो देवस्य धीमही देवस्य भर्ग धीमही। तो ये श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में किसका धीमही आएगा, सप्तम परम धीमही। ये जो गायत्री है, गायत्री का ही अर्थ है, तो गायत्री में देव की जो शक्ति है, जो सूर्य को भी ऊर्जा प्रदान करती है, हम उनका गोपाल है, श्रीमती राधिका जी है, शक्ति है। बिना शक्ति के माध्यम से शक्तिमान को नहीं पाया जा सकता। इसलिए सबसे पहले वेदों में, परिषदों में, शास्त्रों में सर्वत्र ही इन्हीं का ध्यान किया गया। इसलिए इस श्लोक में भी सत्यम परमी बनी वो सत्य स्वरूप है, कृष्ण की परम शक्ति है, पराशक्ति है, स्वरूप शक्ति है, उन ऊर्जा की जो शक्ति जो देवी है, जो हमने भी ऊर्जा ऊर्जा में नहीं है क्या कृष्ण प्रेम रूपी ऊर्जा को हम लोगों को देकर के सारे रूप में ही हमारे स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देते हैं। श्रीमती जी का श्रीमद भागवत में राधा जी को यदि निकाल दिया जाए मारिए तो कुछ नहीं जाएगा, इसलिए ऊर्जा देवी जो श्रीमती राधिका जी और भी इसके बहुत से विशिष्ट कालरात्रि में ऊपर से नहीं दिखता, श्रीमती राधिका जी नहीं देखते इनको काम देता और यथार्थ भाव वही राधा जी के साथ में रहे तो गौतम नहीं रह सकते, कामदेव नहीं हो सकते हैं, इसलिए राधिका जी की राधिका जी की वजह से ही कृष्ण रसो वैसा इत्यादि। तो इस महीने में राधिका जी की आराधना थोड़ी सी भी आराधना आप की जाए तो वो जल्दी से प्रसन्न होकर के सर्वस्व दे दे को प्राप्त कर देती, इससे परम और चीज हम दे। इसलिए हमारे जितने भी गोस्वामी लोग हैं राधा जी की ही आराधना करते हैं, उन्हीं की प्रधानता कृष्ण की भी करते हैं किंतु राधा जी के तरफ में परसंग का इंक्लिनेशन होता, उनका झुकाव किसी तरफ में राधा जी के तरफ, तभी कृष्ण प्रसन्न होते हैं, बिना राधिका जी के प्रसन्न हुए नहीं कर सकते। इसलिए ये उर्ज महिला कहलाता है, जो सावधानी से श्रद्धा पूर्वक कुछ भी यदि इस महीने में आराधना करेगा तो ये जुगल प्रसन्न हो जाते हैं, राधिका जी प्रसन्न हो जाते हैं। विशेष करके इस माथुर मंडल में ब्रज मंडल यदि और उसमें भी यदि वैसे उन्नत श्रेणी के जो वैष्णव लोग हैं उनके अनुगत्य में यदि हम लोग करें, नाम कीर्तन प्रधान में यदि करें, हम लोगों का इस महीने में नाम प्रधान है राधा दामोदर जी का, गोविंद गोपीनाथ प्रधान ये सब, इन सब नामों के माध्यम से राधा कृष्ण का थोड़ी सी आराधना करें वो प्रसन्न हो जाए। इसी महीने में पहले हम पहले इसकी महिमा बतला रहे हैं, इसी महीने में कृष्णचंद्र जी दामोदर हुए जसोदा का, जसोदा जी इसी महीने में दधि मंथन कर रहे सवेरे उठ करके और गोविंद दामो दरबार देती इसका गायन करते, बड़े मधुर स्वर से गायन करते हुए सभी गोपियां अपने अपने घरों में दधि मंथन करते, यशोदा जी भी दधि मंथन करते, और ये प्रतिपदा जो आएगा अभी इसके बाद में अमावस्या आएगी, अमावस्या के बाद ही ये प्रतिपदा आएगी, उसी प्रतिपदा के दिन ही ऐसी लीला हुई थी, यशोदा माँ दधि मंथन कर रही थी और कृष्ण पलंग से उठ करके आधी नींद में गिरते पड़ते ऊँ करते हुए माँ को माँ के समीप आ रहे थे, मैया हमको दूध पिलाए, पर ब्रह्मा उनके दूध के लिए ललच रहे हैं और यशोदा मैया तन्मय होकर के उनके नाम कीर्तन में और दधि मंथन में उनको मक्खन इत्यादि खिलाने के लिए एकदम तन्मय होकर के कीर्तन करिए, गोविंद दामोदर कृष्ण एकदम निकट आए, दधि को मंथन को पकड़ लिया, यशोदा मां ने कृष्ण को देखा, बाल शल रस में भर करके अपनी गोदी में बैठा लिया और उसको अंचल से छिपा करके और दूध पिलाने लगे, आंखों में आंसू आ गए और स्तन ने इतना दूध आया कि अपने आप झरने लगे। कृष्ण भी ललक करके पीने लग गए, एकदम पीने लग गए। उसमें जो यशोदा मैया के स्तन में इतना दूध, विश्व ब्रह्मांड का दूध उन्हीं से पूरा होता है, निकलता है। और इधर कृष्ण का तो दामोदर, जिसके उधर में असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड सब कुछ उनके पेट में है, वो पेट भरने वाला नहीं और ये दूध समाप्त नहीं होता। मैं सोच रहा था कि भाई तुलसी जी की कोई एक माला नहीं दिया, ना हमने दिया, कोई तुलसी की माला आ जाती तो अच्छा था, लेकिन तुलसी जी के लिए माला आ जाए अच्छा होता। रोज सवेरे तुम लोग ही व्यवस्था कर, तुलसी जी के एक माला नहीं दिया, गुरु जी की एक माला। तो आज ही के दिन में ये दूध पिला रही थी, इतने में दूध उठाने लग गया और ये यशोदा जी कृष्ण को छोड़ करके और दूध की रक्षा करने के लिए चली गई। आकर देखा कि दूध फैला हुआ है, मैंने ये कौन किया, घर में ही गई देखी, जैसे वही चोरी कर रहा है मक्खन, इनको कुछ क्रोध सा रोष आ गया, ये छोटी सा बच्चा ऐसा कर रहा है। उनको पकड़ने के लिए दौड़ी, जिनको तपस्या के द्वारा शुद्ध जिनका मन हो चुका है वो लोग भी नहीं पकड़ सकते मन के द्वारा, और कृष्ण से भी तीव्र गति से पकड़ कर दौड़ करके और उनको पकड़ लिया पीछे से। रोने लगे, जब खूब रोने लग गए तो उस समय जो सोलिदान ने हाथ से लठिया फेंक दी, अच्छा तुम्हें बांध कर करो, उस समय में यशोदा जी ने कहा तुम्हें बांध कर करो। उस समय में यशोदा जी अपने केश के रेशम की डोरी से उनको बांधने लगी, दो अंगुल कम पड़ गई, दूसरी रस्सी मंगाई, तीसरी रस्सी मंगाई, ब्रज की सारी रस्सियां आ गई, कृष्ण की कमर चार अंगुल के बाद सोने की जंजीर बंधी हुई है, करनी कमर जैसी की तैसी रस्सी लंबी होती गई, किंतु एक बार भी वो पूरा नहीं बंधन, दो अंगुल कम होता गया। वहां पर समस्त एकत्रित गोपियां थी और यशोदा मैया देख रही है ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये दो अंगुल रस्सी पड़ रही है, कमर पड़ नहीं गई, क्या बात। यशोदा मैया के आंखों में आंसू आ गए, आंखें लाल हो गई, क्रोध भी आया, कुछ रोष भी हुआ, कुछ ग्लानी भी हुई, ये हमारा पेट से ये निकला, इसको हम बांध नहीं सकती, ये छोटे से बच्चे को। उस समय में कृष्ण को कृपा बढ़ पड़ी, कृपया शिष्य बंधने, कृपा से देखा यशोदा मैया इतना परिश्रम ले रही है, ये करते सवेरे से बांधते बांधते दोपहर हो गया, खाया नहीं पिया नहीं, पसीने से एकदम तरबर हो रहे, बस दया गई अपने आप पर। कृष्ण को कोई बांध नहीं सकता, जिनका ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, भीतर नहीं है, जिसकी दसों दिशाएं आसपास में नहीं है, जो भीतर में अणु के अणु और बिहु के बिहु है, उनको कैसे कोई बांध सकता है, आकाश को कोई कैसे बांध सकता है, जिसका कोई आधार ही नहीं है, आकाश ये बंधेगा तो आकाश के भी आकाश है, उनको कोई कैसे बांधे, जिसका बाहर नहीं है, भीतर नहीं है, ऊपर नहीं है, नीचे नहीं, उसको क्या भी बांधेगा, कोई वस्तु रहे तब तो, ये जगत की कोई वस्तु नहीं है, ऊपर नीचे इनका तो यह बांधे ने कहा, किंतु उनको भी प्रेम से उन्होंने बांध दिया, केवल अपने सिर की रस्सी से ही, रेशम की डोरी से ही बांध, इसलिए ये प्रेम के वश में होकर के बंध गए, इसलिए कृष्ण का नाम पड़ गया यशोदा दाम इसी महीने में रास हुआ। रास में गोपियां कृष्ण अंतर फैन हो गए। जब वो प्रकट हुए मनमत मनमत के रूप में और उनके द्वारा रचित आसन पर जब बैठे उनके उत्तरीय वसनों के ऊपर में मनमत मनमत उठता है। उस समय में गोपियों ने ललिता विशाखा इत्यादि गिरे उनका पीताम्बर कृष्ण का पीताम्बर राधा जी की ओढ़नी के साथ में बांध दी। आप कभी नहीं कहीं दर्द भर जाए इसलिए हो गए राधा दामोदर। ये राधा दामोदर जी रूप गोस्वामी के आराध्य थे। इन्होंने अपने आराध्य को उत्तराधिकार रूप में जी गोस्वामी को दे दिया। वृंदावन में राधा दामोदर जी कुछ सेवा की त्रुटि के कारण बोले जहां स्वयं जहां मेरी सेवा अधिक होती है वहां चला गया इसलिए वो कहां चले गए
जयपुर।
जयपुर में वहां की सेवा ग्रहण करने के लिए चले गए। वहां अभी की इसी में कृष्णचंद्र जी गोपियों ने जो पिछले साल अग्रहण का महीना हेमंत ऋतु में जब कि कार्तिक पूर्णिमा होती है अभी यह है
शरद
पूर्णिमा और वो होती है कार्तिक की पूर्णिमा अंत में एक महीना बाद शायद उत्थान एकादशी के बाद तो उस दिन से पूर्णिमा से वो आरंभ करती हैं गोपियां कात्यायनी व्रत और एक महीना तक कात्यायनी की आराधना करती है। सवेरे चली जाती है कब 3 बजे निकल जाती है अपने घरों से अंधकार हो चाहे जो कुछ भी हो मेघ बादल और जो कुछ भी हो सभी उत्कंठित रहती है कब चलेगी कब चलेगी। और सब छोटी छोटी बालिकाएं 10, 12, 8 से लेकर के 12, 13 वर्ष की जितने भी गोपियां हैं जो कन्याकाएं हैं वो सब जाती चीर घाट पर जाती बड़ी कठोर आराधना करती जाने के दिन में सवेरे स्नान करती स्नान करके कात्यायनी जी की मूर्ति बनाकर उनका अर्चन करती है धूप दीप नैवेद्य इत्यादि देती है और एक मंत्र पाठ करती है। जब उनकी पूजा पूरी समाप्त हो जाती है क्या करती है
कात्यायनी
कात्यायनी महामाये महाजोगिनी
देवी
पति में बस यही उनका मंत्र है एक मंत्र। महाजोगिनी जोगिनियों की भी अधिष्ठरी आपके चरणों में हमारी एक प्रार्थना है हमारी आराधना का मूल तात्पर्य एक क्या है हे जोगिनेश्वरी आप हमारी इस प्रार्थना को पूर्ण कर नंद गोप सुतम नंद गोप के लिए सुत है वासुदेव जादव सुतम ये नहीं कहा देवकी सुतम ये नहीं कहा या भगवान कृष्ण ये सब कुछ भी नहीं कहा नंद गोप सुतम नंद देव के ये जो परम मधुर उज्जवल नीलमणि है किशोर कृष्ण है भगवान भगवान नहीं जानती वो बस उन्हीं को आप हे देवी हमको हमारा पति बना
यहाँ पर पति कृष्ण ने पति रूप में तो स्वीकार किया नहीं, पत्नी रूप में स्वीकार किया, तो इनकी प्रार्थना पूरी नहीं हुई। इनको अपनी पत्नी से भी लाख गुण श्रेष्ठ जो गोपियां कामना नहीं कल्पना नहीं कर सकती थी, वो कुमारियां उनको वो चीज दिया पति से। पति होने माने दास्य भाव, दासी का भाव, और अपने संकुल अपने से भी बढ़कर के उनको दे दिया। ये गोपियां हैं कौन? अपने पूर्व जो अभी निकटतम का जो पूर्व जन्म है उसमें कोई कोई रामचंद्र जी के समय में दंडकारण्यवासी 7000 ऋषि बन गए। वो किस दृष्टि से उपासना करते हैं? वो सब श्रीमद् भागवत पढ़ करके गोपियों का चरित्र सुना। अजय कब सुना? ये तो बात तो है त्रेतायुग की, और सुन लिया तो अरे उसके पहले वाले द्वापर में अनंत कोटि द्वापर युग चले गए हैं, आएंगे भी अभी, इसलिए ऐसा प्रश्न नहीं होगा। तो उसमें उन्होंने उसी प्रकार से जब देखा तो वैसे ही भाव हुआ कि गोपियों ने कृष्ण को जैसे पाया है, जैसे वो रास में उनको जिस प्रकार से उनकी पूर्ति पठन की है, सबसे अधिक गोपियों पर कृपा हुई है उनकी। नायो अंग शिवंगो तांत्र ते प्रसाद सत्योचिता नमित गंत रुचो कुतो अन्नान रासस सबे कुछ दंत गृही तकंठ लक्षाशीशां जो उर्गाय
उद्गाद भय सुंदरी
नाम। लक्ष्मी जी को नहीं, द्वारका की महिषियों को जो नहीं हुआ, सीता जी को नहीं हुआ, जो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, जो आशीष लाभ नहीं किया, कृष्ण का हुआ आशीष इन गोपियों ने पाया। कैसे पाया? भीख मांग रहे हैं जगत के जो ब्रह्म हैं, वो ब्रह्म प्रेम की भीख मांग रहे हैं किन से? इन गोपियों के साथ उनके गले में हाथ देकर के आत्मसमर्पण कर दिया। और आत्मसमर्पण करके जैसे बच्चे मैया की गोदी में, मैया दे कोई कुछ मांग, ऐसे मानो गोपियों के गले में हाथ लगा करके और उसे प्रेम की भीख मांगने लगे। कहीं तुम लोग हमको छोड़ करके अंतर्ध्यान मत हो जाना, तुम लोग चली न जाना, राधिका जी छोड़ करके चले गई तो राष्ट्र करोगे, इसलिए प्रेम की भिक्षा कृष्ण जहां मांग रहे हैं। ऐसा आशीष किसी को नहीं मिला, इसलिए उनकी ये भावनाओं को देख करके उन ऋषियों ने, 7000 ऋषियों ने आराधना की। रामचंद्र जी की कृपा से और भी उनकी उत्कंठा बढ़ गई, और रामचंद्र जी की कृपा से वही अब जोग माया के माध्यम से यहाँ पर जन्म लिया है। तो उनकी लालसा कैसी रही होगी? पति करो, उनकी कभी लालसा ऐसी नहीं। पति यहाँ पर दूसरे आते हैं, इसलिए यहाँ पर समझना चाहिए गोपियों के भाव के लिए उन्होंने आराधना की थी। कृष्ण ने उसको कहा गया अच्छा ठीक है, ब्रजम जारी, ब्रज में जाओ, लौट जाओ, तुम्हारी आराधना पूर्ण हो गई। आराधना पूर्ण हो गई, मैं प्रसन्न हो गया। अरे आराधना की कत्यायनी की तो ये कैसे प्रसन्न हो गए? आराधना को प्रसन्न होना चाहिए ना जिसकी आराधना की, कत्यायनी देवी को प्रसन्न होना चाहिए जो वो प्रसन्न होकर के आकर के बढ़ते। हमने देवी जी की आराधना करते कृष्ण क्यों आएंगे?
आराध्य के लिए आराध्य।
तो ये ऐसे तक मालूम होता है जैसे गोपियों ने आराधना किसकी की?
कात्यायनी देवी की।
कात्यायनी देवी की नहीं थी, कात्यायनी देवी की भी जो मूल है इसलिए वो आए, इसलिए वो आए। और उनको इस आगामी आने वाली रजनियों में तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। एक वर्ष के बाद में इसी समय में उन्होंने आज बंसी बजाई, रास किया, सर्वोत्तम लीला जिसमें कि ब्रह्मा की एक एक रात्रि अर्थात हम लोगों के मन से 1000 चतुर्युगों की रात्रियां एक साथ नहीं थी। इतनी छोटी रात में, एक दिन की रात में 12 घंटे में उनकी ये सब लीलाएं नहीं हुई। और उसमें कृष्ण ने कहा न पा रहे हम मेरे भक्त दर्शन किया। कृष्ण ने भी एक तरह से हथियार डाल दिए और कहे मैं तुम लोगों का ऋणी हो गया। आज तक मेरी प्रतिज्ञा थी जो जैसे भजन हमारा करेगा वैसा ही पूर्ण कर देंगे। ये जथा मंत्र पदन के काम तो कर गया, किंतु आज कृष्ण हार गए। बोले जी नहीं, मैं हार गया, तुम लोग जीत गए। तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं तुम्हारी इच्छा को हम लोग पूर्ण, मैं नहीं पूर्ण कर सकता, न पा रहे हम निर्बद्ध से देवताओं की लाखों वर्ष की आयु पा करके भी मैं नहीं पूर्ण कर सकता। इसलिए कृष्ण यहाँ पर, इसीलिए हमारे सुखदेव गोस्वामी इत्यादि जी ने जो वर्णन किया, बंदे नंद ब्रजेश के नाम, ये सब लीलाएं आज ही के दिन से आज ही के रात में हुई थी, शरद पूर्णिमा के दिन। इसी महीने में गो गोवर्धन इत्यादि की पूजा भी थी। इसी महीने में गोवर्धन जी का अम्ल उपयोग हुआ था, गोपों ने जो किया था, इंद्र की पूजा को बंद करके और उनकी पूजा की थी। आज भी इसी महीने में कार्तिक महीने में हुआ था। नंद बाबा जी से कृष्ण ने पूछा ये आज इतना पूरी पकवान जो बन रहा भैया बना रही है, मुझको आज दूध नहीं पिला रही है, आज हम उनके पास में फटक नहीं जाते, उनके निकट भी नहीं जा सकते, भैया कुछ भगा देती है, भैया किस लिए बना रही है। तो न बड़े प्रेम के साथ में दुलार से कहा आज इंद्र की पूजा होगी, इंद्र मख है, इंद्र का जल के पूरा होगा। ये इंद्र कौन है मन कुछ नहीं जानते, भोले भाले बच्चे। उन्होंने कहा विश्व का भरण पोषण करते हैं, वर्षा कराते हैं और अन्न उगाते हैं और सब लोगों का पालन पोषण करते हैं, पशुओं को भी चारा इत्यादि हो जाता है, घासें हो जाती हैं, पानी ना रहे तो आदमी मर जाएगा, इसलिए वो जीवन स्वरूप है, इसलिए उनकी पूजा हम लोग करते हैं। तो जहां पर इंद्र की पूजा नहीं होती वहां क्या होता है? नहीं, वो कुछ नहीं बोल सके। तो उन्होंने कहा जैसे हमारे गिरिराज गोवर्धन तो पानी बरसाते हैं, गायों को चारा खिलाते हैं, हम लोगों को अन्न दान करते हैं, छाया दान करते हैं, हम लोग जीवित रहते हैं, इसलिए इनकी पूजा। उनके चिंती के सामने वो कुछ नहीं बोले और उनकी पूजा हुई। इंद्र जी रुष्ट हो गए, 7 दिनों तक लगातार मूसलाधार वर्षा की हुई, एक तो जड़ा और दूसरा ये सभी लोग कांपने लग गए और ब्रज डूबने लग गया एकदम पूरा, जमुना नदी एकदम भर गई और एकदम पानी से चारों तरफ पानी की पानी हो गया। उस समय उन लोगों ने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण ने उसे देख आकर के और उठा दिया और ब्रज की रक्षा की। गोपियों से इसी दिन प्रथम मिलन हुआ, इस समय उनकी उम्र 7 वर्ष की थी। 7 वर्ष में हृष्ट पुष्ट है ना, तो ये 10 वर्ष 12 वर्ष के जैसे लगते हैं। तो उस समय में इसके बाद में इसी माह में कृष्ण अपूर्व जी गए ब्रज से गोकुल में, गोकुल मैंने वहां नंद गोकुल नंद गांव वहां पर गए और छल बल कल करके कृष्ण को यहाँ ले आए मथुरा में। यहाँ रंगशाला बनी, रंगेश्वर महादेव के चलते। और कृष्ण वहां पर रंगशाला में प्रवेश किया है,